فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تهسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ کے سامنے سورة روم کی آیت 15 رکھی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل صالح کیے فَهُمْ پس بے شک وہ فی میں رَوْدَتِن جنتوں یا باغوں کے یحبرون آرائش کروائے جائیں گے یا جن کا بناؤ کیا جائے گا مراد یہ ہے کہ ان کی وہاں بہت عزت افزائی ہوگی. صرف اس ایک آیت میں نہیں بلکہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں ان الذین آمنوا کے بعد وعمل الصالحات کی بات ہوتی ہے. میرا حال ہے بہت ساری آیات تو آپ سب میں اس سے ہر ایک کو ہی یاد ہوں گی مثلاً والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعمل الصالحات. مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ یا دوسری طرح کہہ لیجئے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہم آمنو میں داخل ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمارے دل سے اٹھے یعنی ہمارا دل اس بات کی تصدیق کرے ویریفیکیشن ہے زبان اس کا اقرار کرے اور عمل ہمارا اس کی گواہی دے. تین چیزیں مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے. تھوڑا سا دہرا لیجئے کیا پتہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو اور ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے یا ایمان کے کیا تقاضے ہیں تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایمان کلمہ پڑھنے کا نام ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف بتائی اس میں تین چیزیں آتی ہیں تصدیق بالقلب اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. دل سے تصدیق کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی یہ جملے بولے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو یہ اس کے دل کی پکار ہو. یہ نہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا یا کوئی اور دنیاوی فائدہ لینے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. یہ کلمہ کلمہ نہیں ہوتا جس میں آپ کا دل اللہ کی محبت میں ایسے چور ہو جائے کہ آپ محسوس کریں اس بات کو کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اور کیا نہیں اللہ کے سوا کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے. ساری باتوں کی ایک بات لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں کوئی رازق نہیں کوئی خالق نہیں کوئی داتا نہیں کوئی مشکل کاٹنے والا نہیں کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں. یعنی الہ لفظ کے اندر بہت کچھ آتا ہے لیکن ابھی ہم اس وقت ایمان سے زیادہ عمل صالح پہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ ایمان کو بھی سمجھا جائے. جو باتیں آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان کو کر کے جو کچھ اس کی فضیلتیں اور جو اس کے فضائل اور اس کی خوبیاں ملتی ہیں اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا ایمان تو ٹھیک ہو. ہمارے کلچر میں عام طور پہ اعمال پہ بڑی بات کی جاتی ہے اور اعمال کتنا کتنا اس عمل کی یہ فضیلت اس کی یہ فائدہ اس کا وظیفہ کر لو اس پہ کر لو. لیکن یہ بات اس سے پہلے کی ہے کہ جب تک آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے آپ مسلمان نہیں ہیں یا آپ کے عقیدے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کیجئے نہ کہ عمل کی بات کی جائے. یہ بالکل ایک مثال کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں مثال ہے کہ لوگ کوئی ایگریمنٹ لیتے ہیں تو پہلے جا کر آپ ان سے پہلے کمٹمنٹ کرتے ہیں نا کہ میں ادھر جاب کروں گا. آپ کا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ ہر طرح کا معاملہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ان کو کہتے ہیں نا آج میں کیا کروں کیا نہ کروں. اور ایک بندے نے جا کے کہا ہی نہیں کہ مجھے جاب دو اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے تو کیا وہ گھر بیٹھ کے وہ سارے کام کر لے تو کوئی اس کو پیسے دے دے گا؟ کہیں گے ہم نے آپ کو کب رکھا ہے؟ نہیں کہا نا. बिल्कुल इसी तरह आमनू क्या है? अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना। के अल्लाह, मैं इस ईमान के दफ्तर में दाखला लेती हूँ। जैसे कोई घर बैठ के पेपर देता रहे और किसी स्कूल या कॉलेज में दाखला ना ले, तो कैंट पे यूनिवर्सिटी उसको कोई डिग्री दे देगी? नहीं देगी ना। तो बस वो छोटी सी बात है कि आमनू कहकर इंसान अपना अकाउंट खुलवाता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, अपने आप को अल्लाह ताला के साथ जोड़ता है। अब ये बात हो गई तो इसकी पहली शर्त क्या है? तस्दीकुम बिलकल्ब। आप अपने दिल से कहें कि वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आपका दिल गवाही दे। ये पहला मरहला होता है। उसके बाद दूसरा मरहला क्या होता है? इकरारुम बिल लिसान, जुबान से इकरार करना। इसको हम कहते हैं शहादा देना। इसको हम कहते हैं फलां आज मुसलमान हो गया। माशाल्लाह आप गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं, मैं भी इसी में ही हूँ, तो हम सुनते हैं ना आज मस्जिद में फलां मुसलमान हुआ। कोई कहता है मैंने आज फलां को मुसलमान किया। नहीं, ये उस दिन ही मुसलमान हुआ, उस दिन उसने आके डिक्लेरेशन ऑफ फेथ दी, अपने ईमान का इजहार किया। वो मुसलमान पहले से हो गया था। कब? जब उसके दिल ने कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन सिर्फ दिल से कहना और मुंह से ना कहना ये भी काफी नहीं है, वरना तो बहुत सारे काफिर मुसलमान थे, जिसमें अबू जहल भी मुसलमान था। उसको पता था अल्लाह एक है और नबी सल्लम सच्चे नबी हैं, लेकिन तासुब और हसद और तकबर की वजह से नहीं माना। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है? जुबान से इकरार। ये आप और मैं दिन रात में 20 बार कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें। बहुत प्यारा कलम है, बेसोचे समझे पढ़ें, बगैर हिसाब के पढ़ें, बगैर गिने पढ़ें। एक छोटी सी पर्ची क़यामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह की लिखी हुई आएगी और किसी एक इंसान के सारे गुनाहों के पर्दे को हल्का करके इसको भारी कर दिया जाएगा। इतना वजन है ला इलाहा इल्लल्लाह में। लेक्चर शुरू थे ला इलाहा, तो उसमें भी मैंने थोड़ी सी कलमे की बात की थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो जब ज़ुबान से आप और मैं कलमा पढ़ते हैं ना, तो दिल को चेक करें कि दिल में भी ये जज्बे हैं, तो इंशाल्लाह बात ठीक है। तीसरी चीज जो इस वक्त हमारा मौजू है, और वो क्या है? अमल बिल जवारे। मसलन कलमा पढ़ा जुबान से, दिल ने उसकी गवाही भी दी। अब मेरे आपके जिस्म का हर अंग, हर उज इसकी दलील भी दे। मसलन आंखें वो देखें जिसके देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया, कान वो सुने जिसके सुनने का अल्लाह ने हुक्म दिया, जुबान पे वो लफ्ज़ हैं जिससे बोलने का अल्लाह ने हुक्म दिया, दिल दिमाग में वो सोचे हों जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। तो अगर आप यहाँ जो बात कह रही हैं उसको गौर से सुनिएगा कि ये ईमान लाने के अंदर शामिल है कि नहीं। शामिल है ना? तो आप कह लीजिए कि इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाकर अमल सालिह करेंगे उनके लिए जन्नत है। अगर कोई बंदा कलमा पढ़कर सो जाए, नमाज का वक्त आया कोई नहीं पढ़ी, रमज़ान के रोज़े आए, मर्जी हुई रखे, नहीं रखे तो नहीं रखे, साल गुजर गया, माल पे ज़कात नहीं दी, कभी दी, दिल किया ना किया, अपनी मर्जी से उठ के चार काम कर लिए और चार ना किए, तो क्या कहेंगे? इसने दिल से तो तस्दीक की हुई है कि अल्लाह एक है, उसकी बात माननी चाहिए, जुबान से भी इसका इकरार करता है, पर इसका अमल गवाही नहीं देता। ठीक है, तो ईमान लाने के बाद अमल सालेह करना लाजमी है। जैसे किसी स्कूल या किसी कोर्स में दाखिला लेने के बाद उस कोर्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना लाजमी होता है, उस इदारे की सारी जो चीज़ें हैं उसको देखना पड़ता है ना। तो अब हम करते हैं बात अमल सवाले पे। याद रखिए कि इंसान की कामयाबी और उसकी फलाह के लिए ईमान के साथ अमल सवाले का होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि आप कह लीजिए कि रात के बाद दिन और दिन का रात। अगर ईमान है खाली, अमल कोई नहीं है, तो ये तो मुनाफ़क़त हो गई। और अगर खाली अमल ही अमल है, तो ईमान कोई नहीं, तो कबूलियत कोई नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कुफार बहुत नेक काम करते हैं, गैर मुस्लिमों के देखो चैरिटी वर्क कितने हैं, क्या अल्लाह इनको जन्नत में नहीं डालेगा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी एक सवाल सूझा था एक मौके पर। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम से, कुफार में से एक बहुत सखी शख्स था, उसके बारे में पूछा कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि उसको उसकी नेकियां फ़ायदा देंगी? इतना सखी था कि हमारे कल्चर में भी उसका नाम मशहूर है, हातम ताई, नाम सुना होगा। कहते हैं हर वक्त इसके घर में देग चूल्हे पर रहती थी, खाने पका पका के बांटता था, लेकिन कुफर था। तो हज़रत आयशा ने एक दिन पूछा अल्लाह के नबी क्या इसको इसकी नेकियाँ फ़ायदा देंगी? आपने फरमाया आयशा कैसे? उसने तो एक बार भी नहीं अल्लाह को कहा कि रब फिर ली, कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह उसको कैसे दे? क्योंकि उसने ईमान के दफ्तर में दाखला ही नहीं दिया। अब उसका नाम लेकर मैं आपको यह हदीस तो सुना सकती हूँ क्योंकि अल्लाह के नबी ने सुना दी, आज के दौर में मैं आप किसी बंदे का नाम लेकर नहीं कह सकते कि ये काफिर है, बात समझ गए? आज कोई नॉन मुस्लिम है, देखने में आपको नॉन मुस्लिम लगता है, आपको क्या पता कि उसने कलमा पढ़ा हो, हम कोई जाके किसी के पास थोड़ी बैठे हैं। तो जो लोग आज मौजूद हैं कुफार या गैर मुस्लिम होने की सूरत में, मैं और आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये अल्लाह और उसके रसूल का काम था कि किसी का ईमान सही है नहीं है या को है, लेकिन एक जनरल रूल यह है कि कुफर की हालत में अमल सवाले का फ़ायदा नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है कि ईमान तो ले आए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गुमान के मुताबिक आप सब में से कोई एक भी सिस्टर ऐसी नहीं है कि जिन्होंने किसी दूसरे दीन को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया है, क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसे ही है ना, क्योंकि हम सब जिसको अपने तौर पे कहते हैं जद्दी पुश्ती मुसलमान है, ऐसे ही है ना, और हम में से सारे ये कहते हैं जी कि हम तो बाप दादा के वक्त से मुसलमान हैं। चूंकि हमें इस्लाम कबूल करने का वो प्रोसेस नहीं गुजरना पड़ा, तो हम में से बहुत सारे लोगों को उसकी कदर ही नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम थोड़ी सी बात अगर इस पे करें कि क्या मुसलमान होने के बाद हमें आमाल भी करने चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, वो आलीशान बागों में बड़े खुश खुर्रम रहेंगे, यानी अल्लाह इनको जन्नत देगा। तो फिर जब एक बंदे के जन्नत में जाने के लिए ईमान के बाद अमल सवाले ज़रूरी है, तो सवाल पैदा होता है कि हम क्या अमल करें, किसको कहते हैं अमल सवाले? इसमें भी दो तीन जुमले सुन के फिर चलिए आगे। आपको मुझे कैसे पता चले कि कोई अमल सवाले है कि नहीं? देखिए, इंग्लिश में दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है राइटियस डीड्स और एक होता है गुड डीड। गुड डीड क्या होता है? कोई भी अच्छा काम सोच के अपने तौर पे करने लग जाए। राइटियस डीड क्या होता है? जो अल्लाह के रसूल ने कहा, तो हमारे लिए मुसलमान होने के नाते ये लाजमी है कोई अमल करें तो उसके लिए अल्लाह या उसके रसूल की दलील मौजूद हो। आज आपके सामने कुछ ऐसे आमाल रखूंगी कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से हमें मिलता है कि छोटे छोटे अमाल हैं लेकिन उसका सवाब बहुत बड़ा है। कुछ अमल ऐसे हैं जिनका सवाब सारी रात के क्याम से बेहतर है, यानी अगर आप वो अमल कर लेना, छोटा सा अमल है, अभी हम सुनेंगे इंशाल्लाह, अमल बहुत छोटा है लेकिन सारी रात जागने का अजर मिलता है। और कुछ अमल ऐसा है कि हमेशा रोज़ा से रहने का अजर है। हम में से कौन है जो सारी रात जागे और हमेशा ही जागे? चले साल की 10 रातें में से 5 तो हम जाग ही लें, बाकी सारा साल तो नहीं जागते ना, और जागना चाहें कुछ हिस्सा उसका तो अल्लाह हमें हमारे लिए उसको आसान कर दे। तो इसलिए ये मौजू बड़ा अहम है आज के दौर में, जिसको आप कहते हैं शॉर्टकट, कम वक्त वाला नशीन। और एक जुमला आज भी बड़ा मशहूर है, इंस्टेंट क्विक सेट, मिनटों में तैयार। तो दुनिया में भी आज देखिए मसरूफियत इतनी और लोग इतना ज़्यादा वक्त की कमी का जिक्र करते हैं, तो मुझे कोई इख्तियार नहीं है ना आपको कोई इख्तियार है, लेकिन अगर अल्लाह के नबी ने कुछ ऐसे अमल बताए तो हमें ज़रूर करने चाहिए। आज के दौर में कोई कुरान पाक का शॉर्टकट नहीं बना सकता, कोई नमाज का शॉर्टकट नहीं बना सकता कि चलो जी ईशा की नमाज इतनी लंबी उसको छोटा कर दें, 4 की बजाय 2 फर्ज पढ़ लें, चले असर की 4 की बजाय 2 फर्ज पढ़ लें, ऐसा नहीं कर सकते। दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा हो गया, तो लिहाजा आज के दौर में ऐसी अहदीस को आम करना मेरा ख्याल है कि उन लोगों को नेकियां करने की रगबत दिलाना है कि जो अभी तक पूरे दिल से ज़्यादा बड़े अमल नहीं कर सके। तो बात समझ गए ना? आप देखिए कि आप 1 मील चल सकते हैं क्योंकि आपका स्टेमिना बन गया है, लेकिन जो कभी चला ही नहीं, 1 मील छोड़ दीजिए वो 1 फरलांग नहीं चलेगा। तो ये जो बुक हम रिकॉर्ड करने वाले हैं या इस टॉपिक पे बात जिस सोच से की जा रही है, वो ये है कि चलो छोटे छोटे कदम तो लो। तो आज से जो चीज़ें हम सुनने वाले हैं, इसको पहले तो हमने अपने ऊपर, फिर अपने बच्चे, फिर अपने वो मतलब घर वाले जो अभी तक उस तरह से नेकी की कोशिश नहीं करते, उनके साथ शेयर करना है कि देखो ये नहीं तो ये तो कर लो। और आप देखिए कितना मेहरबान है हमारा रब, उसको परवाह भी नहीं है। कोई कितना जागे, सारी रात जागे, कोई सारा दिन रोज़ा रखे, वो ज़र्रा नवाज है, नुक्ता नवाज है कि आपके थोड़े अमल पर ज़्यादा फ़ायदा देता है। मिसाल में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा औरत और मिस्कीनों के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह सवाब का हकदार है। और मेरा यानी जो वो बयान कर रहे हैं, यानी वो कहते हैं रावी, कहते हैं मेरा ख्याल है कि मालिक ने कहा कि वो अल्लाह के सामने क्याम करने वाले की तरह जो ना वक्फा करता है और ना थकता है, और उस रोज़ेदार की तरह जो रोज़ा नहीं छोड़ता। अब ये एक हदीस है, बेवा औरत की देखभाल करना कोई मुश्किल काम है? अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है और आपके पास वक्त भी है और आप अपने घर के 8-10 लोगों की जिम्मेदारियां जो पूरी करते हैं, तो अगर एक साहिब हैसियत शख्स है तो किसी बेवा औरत और उसके 2-4 बच्चों की देखभाल कर ले तो कोई मुश्किल अमल तो नहीं है, लेकिन अजर कितना है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह। अब देखिए, अल्लाह के रास्ते में अगर आप लिटरली जिहाद को किताल की सेंस में लें तो मैदाने जंग में जाना, तीरों तलवारों में रहना, हो सकता है मर भी जाएं, हो सकता है वापस आ जाएं, जान जोखों का काम है, इस्लाम की सबसे बुलंद वो चोटी है। तो क्या पता चला कि ये अमल देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। और ये वो चीज़ें हैं कि जिसको सामने रखें तो वाकई हमें एहसास होता है कि हमारा दीन आसानियों का दीन है। तो एक किताब बहुत ही खूबसूरत मेरे सामने है इस वक्त, अगर अल्लाह ने चाहा कभी आप लोगों तक भी पहुंचेगी, जो लोग नेट से सुनेंगे उनको इंशाल्लाह बाद में इसका PDF भेजा जाएगा, आप लोग देखिएगा। तो इस किताब का नाम है छोटे आमाल बड़ा सवाब, और इसके अंदर जो राइटर हैं, इसके राइटर असल में ये अरबी बुक थी और उसको फिर चेंज किया उर्दू में तर्जमे के साथ। और इस बुक की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसकी एक एक हदीस आज के दौर में डबल चेक्ड है। डबल चेक्ड समझते हैं, यानी बाज़ दफ़ा वक्त गुजरने के साथ हदीसों में कुछ ऐसी हदीसें भी शामिल हो जाती हैं कि जो सही नहीं होती। तो नासिरुद्दीन अल्बानी, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमतें करें, उन्होंने इस दौर में बहुत सारी हदीसों पर काम किया। तो आपको जितनी हदीसें बताऊंगी इंशाल्लाह ये सारी की सारी अल्लाह के हुक्म से आसन दर्जे की हैं, इसमें ज़ोफ नहीं है, गरीब हदीस नहीं है, यानी आप पूरे यकीन से वो अमल कर सकते हैं। और सारे अमाल की इंशाल्लाह आपको दलील भी बताऊंगी। तो पहले ये बताइए कि क्या इस टॉपिक की ज़रूरत है सुनने की? मज़ा आ रहा है सुनने में इंशाल्लाह। और छोटे छोटे काम है, आप ज़ुबानी भी याद कर लें कि सिर्फ वो हेडिंग याद कर लें, हदीस नहीं भी याद रखते तो आज जब यहाँ से उठें तो आपके 10-12 ऐसी चीज़ें हो चुकी होंगी कि जिसके करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात के क़याम और सारे दिन के रोज़े के बराबर दिए। अब इसका ये नहीं मतलब कि ये कर लें तो अगले दिन रोज़ा ही ना रखें। कल रोज़ा ही नहीं बीवियों ने रखा क्या सोच के कि जी वो हमने ये वजीफा पढ़ लिया था, ऐसा नहीं है। देखिए ये भी याद रखिए कि अल्लाह ने जिसको तौफीक देनी होती है ना, वो फिर ये करके और भी नेकियां करता है। ये भी एक बस बात समझ आती है जब आती है। लोग शुरू में ये काम शॉर्टकट समझ के करेंगे, बस आपके बच्चों को आप लेते हैं, यंग बच्चे हैं, उनका भी रुझान नहीं है नेकी की तरफ या इस तरह, आप उनको इस अमल की दावत दें, आप देखिएगा पहले वो ये अमल शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल इतना खुबेगा नेकी में और शैतान उनसे इतना दूर होने लगेगा कि उसके बाद फिर उनका दिल करेगा कि अब हम दूसरे भी काम करें। नेकी दूसरी नेकी को बुलाती है, जैसे खानदान होता है ना, हमारे खानदान है ना, इसी तरह नेकियों के भी खानदान होते हैं। आप एक बच्ची किसी की ब्याह के लाते हैं तो पूरे खानदान के साथ रिश्तेदारी नहीं हो जाती, बस ऐसे ही है। एक नेकी को आप पकड़ लें, अगली नेकियां इंशाल्लाह खुद ब खुद आ जाएंगी। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इसमें से एक एक चीज़ पे अमल करने वाला बना दे।